हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 14वां अध्याय के 20वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। यामा शित्येन्द्रिया रातीन दुर्जया नितराश्रम है वयम जयम हेलाभिर दस्युन दुर्ग पतिर यथा। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जिस तरह है किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। तात्पर्य, मानव समाज के चार आश्रमों ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं, पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथा कथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भव बंधन का कारण है, इसलिए तीन आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणगणिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगिया हे वृंदावनेश्वरी नृसिंहानुजे देवी प्रणमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सो यहाँ पर वृतान चल रहा है कश्यप मुनि और उसकी पत्नी अदिति के बीच में वार्तालाप चल रहा है। सो अदिति रिक्वेस्ट कर रही है कश्यप मुनि को कि हमारे पिता दक्ष ने हम 13 बहनों का विवाह किया आपके साथ में, सो बाकी सबकी संतानें हैं, मेरी संतान नहीं है। सो आप प्लीज़ मुझे संतुष्ट कीजिए और मुझे संतान प्रदान कीजिए। तो उसकी रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि समय अनुचित था वो, है ना। तो कश्यप मुनि ने समझाया उसको कि देखो अभी समय अनुचित नहीं है, मैं आपको संतुष्ट करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़। लेकिन अदिति ने कहा मैं
इंतजार नहीं कर सकती। सो सो उसको समझा रहे हैं जो कश्यप मुनि हैं, समझा रहे हैं और काफ़ी टाइम ले रहे हैं समझाने में। तो उनका मकसद ये था, सीधे से मना नहीं कर सके तो मकसद ये था कि टाइम बीत जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने बोला कि, और पीछे के श्लोक में भी आप देखेंगे कि वो प्रशंसा कर रहे हैं, जो पत्नी है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि पत्नी के साथ रहते हुए मनुष्य भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है, पत्नी अर्धांगनी होती है और पुरुष पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है, और पत्नी तो शरीर रूपी जो किला है उसकी जो है सेनापति है ना। तो अगर सेनापति नहीं होगा तो जो किला है उसके उस पर लोग आक्रमण कर देंगे चोर उचक्के और उसको लूट लेंगे, लेकिन जो पत्नी है वो रक्षा करती है ना। सो हमारे शास्त्रों में दो तरह के आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए दो तरह के मार्ग हैं ना, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग है ना। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग जो है उसमें जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो सेक्स है, यौन संबंध है, वो पूरी तरह से निषेध है। और वो कौन से तीन आश्रम है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास है ना। सो ये जो तीन आश्रम है ये निवृत्ति मार्ग के आश्रम है ना, इसमें हम इंद्र तृप्ति में लिप्त नहीं हो सकते। लेकिन जो चौथा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि सीमित सुविधा उपलब्ध है इंद्र तृप्ति के लिए, सीमित सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि गृहस्थ जो जो शादीशुदा व्यक्ति है वो या गृहस्थ बन सकता है या गृहमेदी बन सकता है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो इंद्र तृप्ति में बहुत ज़्यादा संलग्न है वो गृहमेदी है, और जो रेगुलेटेड, जो शास्त्र उचित नियमों के अनुसार जो इंद्र तृप्ति कर रहा है वो गृहस्थ है ना। ये डिफरेंस है ना। तो अगर बिल्कुल अनियमित और बिना सोचे विचारे अगर इंद्र तृप्ति में लगेंगे तो वो व्यक्ति गृहमेदी। गृहमेदी का मतलब है कि जो गृहव्रती है, जो घर से आगे कुछ नहीं सोच रहा है और जो ये सोच रहा है कि मेरे घर वाले, मेरे बंधु बांधव मेरी रक्षा कर लेंगे, है ना। यहाँ पर भी रक्षा की बात हो रही है, इस श्लोक में भी रक्षा की बात हो रही है, लेकिन इस श्लोक में जो रक्षा की बात है वो अलग दृष्टिकोण से है, है ना। और अगर आप 14वां स्कंद पढ़ें और 14वें स्कंद का, जिसमें नारद जी मिले प्राचीन बरिषद से, नहीं प्राचीन बरिषद एक राजा थे, वो यज्ञ के नाम पे बहुत सारे जानवर मारे जा रहे थे, आपने पढ़ा है किसी ने? हाँ, बहुत सारे जानवरों को मारते जा रहे थे। तो नारद मुनि ने रोका उनको, बोला क्या कर रहे हो आप ये, हाँ ये जितने आप जानवर मार रहे हो, पशु पक्षी मार रहे हो, सारे ऊपर मंडरा रहे हैं, और जब तुम मरोगे तो ऊपर जाओगे तो रास्ते में तुम्हें ये भी मारेंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला जो मीट है, मांस जिसे हम कहते हैं, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं मांस, और मांस जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, माम स। सो प्रभुपाद ने बोला कि माम स का मतलब है कि जैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वैसा तुम मेरे साथ करना, है ना। सो जैसे हम पशुओं का वध करेंगे तो समय आने पर पशु हमारा वध करेंगे। एक बार प्रभुपाद शायद थेम्स नदी के किनारे प्रभुपाद थे, तो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे लोग, तो एक व्यक्ति ने मछली पकड़ी, उसके कांटे में मछली फंस गई, तो उसने निकाल के प्रभुपाद को गिफ्ट किया उसने। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं तुम ही रखो मांस, आज तुम इसको पकड़ रहे हो, कल ये जो है तुम मछली बनोगे, ये मनुष्य जीवन में आएगी मछली और ये तुम्हारा शिकार करेगी, तो तुम इसका सुख भोगो, मुझे आवश्यकता नहीं है, है ना। सो जो गृहस्थ जीवन में, सो नारद जी ने बोला प्राचीन भरिषद को, अब राजा थे तो सीधे से उसको नहीं बोल पाए कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, तो उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि देखो एक राजा था पुरंजन, है ना, तो ये आप भागवतम के 34 खंड में 25 26 27 अध्याय पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही शिक्षाप्रद, वैसे तो पूरी भागवतम ही शिक्षाप्रद है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो आज का श्लोक है इसमें आप भागवतम का 34 स्कंद का 25 26 27वां अगर अध्याय पढ़ेंगे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, है ना। सो नारद जी ने प्राचीन भरिषद को शिक्षा देते हुए समझाया कि आप ऐसा मत करो, देखो एक पुरंजन था एक राजा, वो भटक रहा था चारों ओर, फिर उसको एक स्त्री मिली बहुत सुंदर थी, उस स्त्री के 11 सेवक थे, तो प्रभुपाद ने बोला जो 11 सेवक हैं वो 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, तो 11 सेवक थे और एक सांप था 5 मुख वाला, तो प्रभुपाद ने बोला जो 5 मुख वाला सांप है वो हमारी जो 5 तरह की लाइफ एयर है, प्राण वायु है, अपान उदान, ये जो 5 तरह की वायु है, तो वो जो 5 फन वाला सांप था वो रक्षा कर रहा था उस स्त्री की, तो पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया और वो 100 वर्षों तक साथ में रहे इकट्ठे। तो एक दिन पुरंजन अपनी पत्नी को छोड़ के शिकार पे चला गया, तो उसकी अवहेलना करके, और जब शिकार से वापस आया बहुत थका हुआ था, तो उसने चंदन वगैरह लगाया अपने शरीर पे, नहाया धोया खाना खाया, फिर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शिकार से आया वापस और जो नहाया धोया शरीर पे चंदन लगाया का मतलब है दीक्षा, कि भौतिक कार्यों से निवृत्त होके किसी व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा नहीं फिर वो अपनी पत्नी की तलाश करने लगा, तो मतलब वो बुद्धि की खोज करने लगा कि कैसे बुद्धि को ठीक तरह से प्रयोग करूं, है ना। तो प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं जो स्त्री है, स्त्री बुद्धि की तरह होती है, है ना, अगर अच्छी स्त्री है। और प्रभुपाद इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि अगर किसी के घर में अच्छी माता या अच्छी स्त्री है, अच्छी माता और अच्छी स्त्री है, तो उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में रहकर भी अच्छे से भजन कर सकता है ना। और चाणक्य पंडित कह रहे हैं, चाणक्य पंडित का वचन है कि अगर किसी के घर में माँ नहीं है और भार्या च अप्रिय वादिने, और अगर उसकी पत्नी जो है वो अप्रिय वचन बोलती है, कटु वचन बोलती है, है ना, तो उसको घर छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए, है ना, उसको घर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम, क्यों, उसका घर भी जंगल जैसे ही है। अगर बंदा घर पहुंचे शाम को, सामने से पत्नी लड़ रही हो, नहीं वो बोलेगा यार क्या पूरा दिन खट के आया और आते ही घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, क्या फायदा घर में रहने के लिए, नहीं। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं तो भाई घर में रह क्यों रहे हो, छोड़ो लात मारो घर को, जंगल में चले जाओ। लेकिन अगर पत्नी अच्छी बुद्धि वाली है, अगर पत्नी समझदार है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें सहायक बनेगी,
इसमें सुविधा प्रदान करेगी, है ना। और इंद्रियां जब वेगवान होती हैं तो इंद्रियों को संतुष्ट करेगी स्त्री, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं चौथे स्कंद में कि स्त्री को इसलिए अर्धांगिनी भी बोला जाता है, और यहाँ पर भी पिछले श्लोक में बोल रहे हैं, है ना। पिछले श्लोक में कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है। और प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं बेटर हाफ, है ना, बेटर हाफ, कि पत्नी के बिना जो पति है वो अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पाएगा। अगर अच्छे से भक्ति करनी है तो पत्नी की जब तक सहायता नहीं मिलेगी तब तक अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज आपने सुबह उठ के मंगला आरती करनी है तो आप सुबह उठ गए, आप मंगला आरती करने के लिए पहले भगवान को उठाएंगे, भोग लगाएंगे, भोग ही नहीं है। आप बोलोगे यार भोग नहीं है क्या करूँ, अब सुबह उठ के आप तो बनाने से रहे, अगर पत्नी ने उठ के कुछ बनाया या रात को बना के रखा तो ही आप भोग लगा पाओगे ना। और अगर जो पूजा का सामान है वही सारा गंदा है, तो आप चाहे उठ भी गए, आप मंगल आरती करना भी चाहते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। दो चार दिन चलो जबरदस्ती कर भी लिया, फिर बोलोगे यार बड़ी फजूली वाला काम है, बात मतलब बड़ी प्रॉब्लम है यार, चलो थोड़ा लेट कर देता हूँ। फिर वो 4:30 का 5:30 हो जाता है, फिर वो 6, 8, फिर 10 भी बज जाते हैं, फिर तो वो मंगला आरती फिर मंगला आरती नहीं रहती, वो दोपहर की आरती हो जाती है, नहीं। लेकिन अगर पत्नी सहायक है, वो सारा सामान पहले से उसने बनाकर, जैसे चैतन्य चरितामृत में आप उदाहरण देखते हो, शिवास ठाकुर हैं, शिवास ठाकुर की पत्नी का क्या नाम है, मालिनी, है ना। आपको पता ही नहीं है, देख लो। सो शिवास ठाकुर जो है वो उनकी जो पत्नी मालिनी है वो पूरा ध्यान रखती थी, है ना, सारा साज सामग्री जो पूजा की सामग्री पूरी एकदम तैयार करके रखती थी। और शिवास ठाकुर आते थे, यूज करते थे भगवान के आराधना के, चलो काम हो गया, है ना। अगर मालिनी देवी उनकी हेल्प नहीं कर रही होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए भी करना, है ना। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं चौथे स्कंद में कि जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है वो पत्नी के सिर पे वो घर छोड़ के कहीं भी चले जाते थे, जैसे वो पूर्वी बंगाल चले गए, नहीं, वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को शिक्षा दी संस्कृत की, टीचिंग्स जब प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु संस्कृत सिखा रहे थे, संस्कृत के अध्यापक थे, तो वहाँ चले गए बेफिक्री से, क्योंकि उनको पता है पीछे उनकी जो पत्नी है वो सब संभाल लेंगी, उनकी माता की सेवा कर लेंगी, है ना। अगर उनको ऐसा भरोसा नहीं होता तो शायद नहीं जा पाते, है ना। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को स्वीकार करें, हम इस चीज को पहचाने, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही स्त्री का रक्षक है, केवल पुरुष का कर्तव्य है स्त्री की रक्षा करना, स्त्री भी पुरुष की रक्षा करती है, दोनों के आपसी सहयोग से बात चलती है, है ना। तो अगर पुरुष स्त्री के लिए आवश्यक है तो स्त्री भी पुरुष की पूरी सहायता करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों में समानता है, ऐसा नहीं कोई ऊपर है नीचे है, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है घर चलाने के लिए और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। सो अगर स्त्री पुरुष की अपने पति की सहायता कर रही है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती, है ना। सो और गृहस्थ जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का मकसद ही यही है
कि घर में शांति पूर्वक रहते हुए और अपनी इंद्रियों को यथासंभव नियंत्रित करते हुए हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन इस्कॉन में विशेष रूप से इस्कॉन में ये समस्या आती है ना, कि जो डिवोटीज होते हैं वो एकदम से अपने आप को बहुत अच्छा भक्त मानना शुरू कर देते हैं, है ना, और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो और कोशिश करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा नहीं लगे। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि भक्त जो होते हैं उनका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। होना ये चाहिए था कि भक्ति में जुड़ के भक्त जो हैं वो सरल हो जाएं, उनका हृदय कोमल हो जाए, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि जो भक्त जुड़ते हैं भक्ति में इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं तो उनका हृदय कठोर होना शुरू हो जाता है। आपका ऐसा अनुभव है कि नहीं है? बहुत मतलब लोग बोलते हैं डिवोटिस को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप लोगों को कितना गुस्सा आना शुरू हो गया, है ना। जब मैं भी भक्ति में जब शुरू में जुड़ा था तो घर वालों ने मुझे बोला कि भाई पहले ज़्यादा ठीक था, अभी इतना गुस्सा कहाँ से आ गया तेरे में, है ना। तो हम लोग जब जो हमारा स्तर है हम जब उससे आगे बढ़ के कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स आ जाती है, है ना। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं हाँ धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, कि जो धर्म के नियमों के अनुसार जो सेक्स लाइफ है काम है वो मैं हूँ, है ना। इसका मतलब संतान उत्पत्ति के लिए अगर अगर स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो वो उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब डिवोटीज जब कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है इस्कॉन में तो वो एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लेता है ना। और उससे क्या होता है कि घर में अब जो पार्टनर है वो हो सकता है वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फैमिली लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने पर्सनली ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ में आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, है ना। इसके लिए गृहस्थ जीवन में कैसे रह सकते हैं हम आराम से, उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है। हम लोगों को एक सीनियर डिवोटी से या गुरु से इस संवेदनशील विषय पर हमें मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, नहीं तो हम अपने दिमाग से चलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग खड़ी कर देते हैं और उस प्रॉब्लम के चलते कई बार तो फैमिली टूट भी जाती है, लोग हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो हस्बैंड का जो कर्तव्य है पत्नी को सेटिस्फाई करना और पत्नी का कर्तव्य है हस्बैंड को सेटिस्फाई करना। अगर कई बार होता है कि हस्बैंड ज़्यादा एडवांस होता है पत्नी अभी उस स्तर पे नहीं होती, या कई बार पत्नी एडवांस होती है पति उस स्तर पे नहीं होता, या कई बार पति बिल्कुल ही डिवोटी नहीं होता कई बार ही, तो उस सिचुएशन में एक कॉम्प्रोमाइज़ लेके चलना चाहिए, बहुत ही रिजिड स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लेना चाहिए, उससे फैमिलीज जो हैं बिखर सकती हैं। और अगर हमने लंबे समय तक भक्ति करनी है तो जो शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं कई बार उसको छोड़ना पड़ता है। अगर लंबे समय तक भक्ति करनी है तो हमें ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जिसमें कई बार हमें छोटे थोड़े समय के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है ना। और धीरे धीरे, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप कोशिश करो
अपने इंद्रियों को संयमित करने की, आप बहुत अच्छा अच्छा आपकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बना सकती है, फाइन आप अच्छा खाना खाओ, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी इच्छा कर रही है कुछ चटपटा खाने की या राजमा चावल खाने की, तो फाइन खा लो, है ना। आप ज़्यादा उसको रोकोगे तो धीरे धीरे क्या है कि वो बहुत एक मतलब गुबार इकट्ठा हो जाएगा और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है आप। और हम देखते हैं कि डिवोटी जो है अच्छे वाली चैंटिंग कर रहा होगा, अच्छे वाली भक्ति में जुड़ा होगा, एकदम से छोड़ देता है, है ना। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप इंद्रियों को नियमित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि एक ही दिन में हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है, है ना। हमारा गोल है कि अपने सारे इंद्रिय वेगों को नियंत्रित करना, लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे उस पर काम करते रहो, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। आज अगर आप 100 चीज़ें कर रहे हो, आप सोचो कि वो 100 को एकदम से ज़ीरो कर देंगे, उसमें आप कर सकते हो आर्टिफिशियली, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और हो सकता है कि दिमाग ही बिल्कुल पूरा घूम जाए, बोले यार कहाँ फंस गए, है ना। इसीलिए 100 चीज़ें कर रहे हो तो 100 को पहले 90 पे लेके आओ, 80 पे लेके आओ, 70 पे लेके आओ। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को नियमित करो और एक स्टेज आए उसमें आप 10 साल में, चाहे 15 साल लगे, चाहे कितना टाइम लगे, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में कर लो और सपोर्ट करो अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को। जो पति है उसको पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए और जो पत्नी है उसको पति को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ तानाशाही नहीं चलाने चाहिए, है ना। जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसकी भावनाओं को भी, उसकी स्थिति को एप्रिशिएट करना चाहिए, समझना चाहिए और उसको समझा कर और धीरे धीरे उसको उस, अगर आपका स्तर आपको लगता है ऊपर है तो उसको समझा बुझा कर टाइम देकर उस स्तर पे लेके आना चाहिए, ताकि आपके अनुसार चीज़ें हों। आप ऐसा अगर बोलोगे कल से ऐसा ही होगा, ये चीज़ कल से नहीं होगी, बात खत्म, वो बात चलती नहीं है, है ना। वो एक टाइम पर एक बार के लिए आपका पार्टनर बात मान लेगा, लेकिन जैसे ही आपने कोई गलती की, बोले देखो तुम भी तो ऐसा कर रहे हो, मेरे पे सारे बोझ नियम लाद दिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपस में वो मनमुटाव हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है, हमें अपने स्तर को पहचानना चाहिए, हम किस स्तर पे हैं, और उस स्तर पे हमें व्यवहार करना चाहिए और उस स्तर से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जमीन पे गिर पड़ा तो जमीन का सहारा लेके तो ऊपर उठेगा, नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर सपोज हम पैर फिसल गए, एकदम धड़ाम से जमीन पे गिर गए, तो हम बिना जमीन का सहारा लिए कैसे खड़े हो जाएंगे। हमें जमीन का सहारा लेना ही पड़ेगा, एक बार सहारा लेके उठ गए, फिर चाहे आपने उसका सहारा नहीं लिया जमीन का, अब आप जमीन को हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन एक बार उठने के लिए तो हाथ लगाना पड़ेगा ना। अगर हम तीन गुणों में बंधे हुए हैं तो हमें तीन गुणों से बाहर निकलने के लिए तीन गुणों का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। पहले हम रजोगुण सतोगुण का सहारा लेंगे तमोगुण के प्रभाव को घटाने के लिए, फिर हम सतोगुण का सहारा लेंगे रजोगुण का प्रभाव घटाने के लिए, फिर सतोगुण में स्थित होने की कोशिश करेंगे और फिर सतोगुण को भी छोड़ के निस्त्रय गुण भवार्जुना, फिर हम भक्ति में स्थित हो सकते हैं, शुद्ध भक्ति में। इस प्रकार अभी हम करोड़ों जन्मों से इंद्र तृप्ति किए जा रहे हैं बिल्कुल अंधाधुंध, और हम सोचें कि आज हमने सुन लिया कि इंद्र तृप्ति ग्रह मेदी
अंधकूप बकवास है सब, आज से सब छोड़ दो, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है लाखों में से कोई इक्का दुक्का कर पाए, उसके पूर्व जन्म के भक्ति चल रही है, उसने कर लिया, लेकिन उसने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम पहले समझें कि हमारा अभी स्तर क्या है, और हमारा अभी जो स्तर है उसको समझने के लिए भी हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए, जो हमें हमारा एग्जिस्टिंग, हमारा अभी जो सामयिक, जो आज हमारा क्या स्तर है वो हमें समझाए, और फिर धीरे धीरे हम कुछ इंद्रिय तृप्ति करें, कुछ धीरे धीरे छोड़ते रहें, करके एक समय आएगा जब आप जीने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भोजन या निद्रा आदि का प्रयोग करेंगे और बाकी समय भक्ति में लगाएंगे, है ना। तो वो हमारा गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज ही करना जरूरी है, आज करना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए हम जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य तक पहुँचे, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हम गृहस्थ आश्रम में अगर हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा हम अकेले नहीं दौड़ सकते। जो स्त्री और पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, दोनों के पैर एक रस्सी से बंधे हुए हैं। अगर पुरुष पति सोचे कि मैं तो दौड़ता हूँ भैया 50 किलोमीटर की स्पीड में, पत्नी दौड़ नहीं पा रही 10 किलोमीटर की स्पीड में, तो पति अगर दौड़ना भी शुरू कर देगा हाँ तो एकदम रस्सी को झटका लगेगा, पत्नी गिर जाएगी नीचे, फिर क्या होगा, वो उसको तब भी घसीटता रहेगा तो चोट लग जाएगी। इसी तरह से पत्नी सोचे कि भैया मैं भागती हूँ फुल स्पीड से, जो होगा देखी जाएगी, तो उसमें पति को नुकसान होगा, उसकी भावनाएं आहत होंगी, आपको सहयोग नहीं करेंगे वो, है ना। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भक्ति में, हमारी इच्छा है भक्ति आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर आप, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको जो आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, उसकी स्थिति को भी समझना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा, उसकी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा, और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने एकदम से, देखो हमने एक दिन से ही पूरा सब चेंज कर दिया, पूरा घर वैकुंठ बना दिया, वो ज़्यादा देर तक वैकुंठ नहीं रहता है। सो जरूरत है कि हम सोच समझकर सीनियर डिवोटीज के मार्गदर्शन में कदम बढ़ाएं, और इस तरह से कदम बढ़ाएं कि हमें कदम वापस नहीं खींचने पड़े, है ना। हम कदम बढ़ाएं, चाहे धीरे धीरे प्रगति होगी, लेकिन वो प्रगति ऐसी होगी कि उसमें कमी नहीं आएगी, आगे जाकर आपके मन में टेंशन्स नहीं आएंगी, चिंता नहीं आएगी, आप अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। लेकिन युक्त वैराग्य के नाम पे बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लग जाना भी प्रॉब्लम है ना। तो हमें सावधान भी रहना पड़ेगा, और हमें दूसरे व्यक्ति की, जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, उसकी भावनाओं का आदर भी करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें हमें साथ में रख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम में या संन्यास आश्रम में ही बहुत सावधानी की जरूरत है, गृहस्थ आश्रम में भी उतनी ही सावधानी, उतने ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, है ना। सो अगर हम इस चीज को सोचकर और मार्गदर्शन में हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो हम अवश्य भक्ति में प्रगति करेंगे, और वो जो प्रगति होगी वो स्थायी होगी, वो प्रगति ऐसी होगी कि हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए और ऐसे नहीं अकेले दौड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो हमारा जो हस्बैंड है वो हमारे लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा है, पैसा कमा के ला रहा है, हमें शेल्टर दे रहा है, आश्रय दे रखा है, और पति को सोचना चाहिए कि पत्नी हमारे लिए कितने काम कर रही है, हमारे हमने आज तक कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोए, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, पका पकाया खाना मिल जाता है, बिस्तरा घर पूरा साफ सुथरा मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई काम हो गया, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और जो हस्बैंड है उसको पत्नी के इस परिश्रम का सम्मान करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि मैं मानता हूँ आप मेरी बहुत हेल्प कर रही हो, मेरी बहुत सहायता कर रही हो, और उसका ऋण चुकाना चाहिए, उनको अच्छी तरह से समझा कर, उनको उनका मार्गदर्शन देकर, बहुत प्यार से सहनशीलता से उनको भक्ति में साथ में आगे लेकर बढ़ना चाहिए, है ना। इसी तरह से अगर गृहस्थ आश्रम में हस्बैंड और वाइफ आपस में सहयोग से चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और वो दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे, दूसरे लोग देखेंगे कि देखो कितने अच्छे से ये लोग जब से कृष्ण भक्त बने हैं पूरा घर ही चेंज हो गया है इनका, हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, बच्चे कितने संस्कारी हैं, तो वो भी प्रचार है। लोग आपको देखेंगे और लोग आपको देख ही रहे हैं, आप चाहे चाहो ना चाहो, आपको पता चले या ना चले, लोग आपको हमेशा देखते रहते हैं और अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि यार मेरे मुकाबले ये ज़्यादा सुखी है या कम सुखी है। अगर उनको लगेगा कि जो कृष्ण भावना भावित घर है वो अच्छे से सब मिलके आपस में रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और बहुत सुखी हैं, तो उसका भी मन करेगा कि हम भी ऐसे करें। अगर आपस में लड़े जा रहे हैं वो, है ना, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा यार इससे अच्छे से तो हम ही हैं भैया, आराम से रह तो रहे हैं, शांति है यार, चलो जो भी है। तो भक्ति से आपको देखकर लोग दूर हटेंगे, है ना। तो प्रचार के लिए भी ये आवश्यक है कि आपका घर सुखी दिखना चाहिए, और आप सोचो कि सुखी है नहीं, दिख जाए वो नहीं होगा, एक आधा दिन हो सकता है, लंबे समय तक नहीं होगा। जैसा आपका घर का वातावरण है वो दिख जाता है धीरे धीरे, है ना। दो चार पांच बार लोग आपसे मिलेंगे पता चल जाएगा क्या चल रहा है, एक बार किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अगर रोज ही आपसे मिलने आ रहा है तो उसको पता नहीं चल जाएगा घर में प्रॉब्लम चल रही है इनके, नहीं। सो हम अच्छे से, और ये सहयोग आपसी सहयोग करना चाहिए, लेकिन आपसी सहयोग इतना नहीं हो कि सहयोग ही करते रहे कृष्ण को भूल जाए, है ना। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो वो भी प्रचार का काम करेगा, लोग हमें देखकर, हमारे कृष्ण भावना भावित घर को देखकर लोग भक्ति में भी जुड़ेंगे, ठीक है, और हमारा अपना भी लाभ होगा। हरे कृष्णा।